पहले कहा गया है कि रामायण आदि सत काव्यों से सत कार्यों में कर्तव्य ज्ञान और असत कार्यों में हेयता ज्ञान होता है, उससे सत कार्यों से में प्रकृति और प्रवृत्ति से धर्म होता है। इस प्रकार काव्य काव्य द्वारा कर्तव्यता ज्ञान द्वारा केवल धर्म कार्यों में प्रवृत्ति का कारण हुआ धर्म का नहीं। धर्म के प्रति वह अन्यथा सिद्ध ही रहा। धर्म का कारण प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति का कारण काव्य, काव्य का कारण अन्यथा सिद्ध कहता है, जैसे घट के प्रति कुम्हार का पिता। अतएव काव्यों में पूर्वोक्त चतुर्वर्ग की कारणता न बनी। इस अभिप्राय से दूसरे प्रकार उत्पादन करके करने के लिए उपक्रम करते हैं। किंचेति काव्य में धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरण बिंद से स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध की गई है। इस प्रकार काव्य धर्म के प्रति साक्षात कारण हो गया है। एक शब्द इत्यादि वेद वाक्यों में भी प्रत्येक के द्वारा धर्म की प्राप्ति सुप्रसिद्ध है। इस वाक्य में शब्द के एक वचन में से भी एकत्व रूप अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी एक कहने से एको अपि यह अर्थ लक्षित होता है। इससे यह तत्पर्य निकलता है कि एक भी शब्द यदि सब प्रयुक्त हो, अर्थात रस का व्यंजक बना के सुंदर रीति से निवेदित किया गया हो अथवा सम्यक रीति से ज्ञात हो, अर्थात काव्यानुशीलन के समय भावना के द्वारा यथावत रस का व्यंजक समझा गया हो, तो वह इस लोक में और परलोक में कामधेनु मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। इससे स्पष्ट है कि कार्यों की रचना और उनका अनुशीलन दोनों ही धर्मोत्पादक है, कामधुक है और वेदानुमोदित है। श्लोक संस्कृत वाक्य। किंच काव्या धर्म प्राप्तिर भगवान नारायण चरण बिंदस्तवादिना एकः शब्द सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुग्भवति इत्यादि देव वाक्यभ्यश्च सुप्रसिद्धैव न्यार्थ प्रतिश्च प्रत्यक्ष सीधा काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारैव मोक्ष प्राप्तिश्चैत जन्य धर्म फलानु अनुसंधानात् माक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाश्च चतुर्वर्ग प्राप्तिर्हे वेद शास्त्रेभ्यो निरसतया दुखादेव परिणत बुद्धिनामेव जायते परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धिनामपि पुनः काव्यदेव ननु तरहि परिणत बुधिर्भि सत्सु वेदा शास्त्रेषु कामिति काव्ये यत्नः करणीय इत्यपि न वक्तव्यम्। कटुक औषधोपस मनीयस्य रोगस्य शीतसर्करोप समनियत्वे कस्य वा रोगिणः शीतसर्करा प्रवृत्ति साधयसि न स्यात्। किंच काव्यस्योपादेयत्वमग्नि पुराणे अप्युक्तम् नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् इति च विष्णु पुराणे अपि काव्यालपाञ्चयेत् केचित् कीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंसा महात्मना इति। काव्यों से उनके बनाने वाला काव्यों से उनके बनाने वालों को धन की प्राप्ति होती है, यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो है। राजादिकों से कवियों का धनागम देखा ही जाता है। काम सुख की प्राप्ति धन के द्वारा प्रत्यक्ष है। काव्य से उत्पन्न धर्म से के फल का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति भी काव्य के द्वारा हो सकती है अथवा मोक्ष के उपयोगी उपनिषदादि वाक्यों में व्युत्पत्ति पैदा करने के कारण काव्य को मोक्ष का हेतु जानना काव्य के ज्ञान से मोक्षोपयोगी वाक्यों के समझने से सहायता मिलेगी। अतः परंपरा से मोक्ष के प्रति काव्य की कारणता जानना, इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुर वर्ग में किसी के प्रति तो काव्य साक्षात कारण होता है और किसी के प्रति परंपरा से। धर्म और अर्थ के प्रति प्रायः इसकी साक्षात कारणता होती है और काम और मोक्ष के प्रति अधिकांश परंपरा के कारण परंपरा से कारण होता है। चतुर्वर्ग इत्यादि कारिका में एव शब्द का व्यावर्त्य दिखाते हैं। चतुर्वर्ग ती निरस होने के कारण वेद शास्त्र आदि से चतुर्वर्ग की प्राप्ति दुख से ही होती है और वह भी परिपंक बुद्धि पुरुषों को ही होती है, सबको नहीं। किंतु परम आनंद समूह रसास्वाद का उत्पाद होने के कारण सुकुमार बुद्धि राजकुमार आदि को भी सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति किसी से हो सकती है। तो यह काव्य से ही तात्पर्य यह है कि एव शब्द में वेद शास्त्र आदि की आवृत्ति करना अभिष्ट है, क्योंकि उनसे सुखपूर्वक धर्मादि की प्राप्ति नहीं होती और सुकुमार बुद्धि वालों को तो किसी प्रकार होती ही नहीं। प्रश्न ननुतरहिति, अच्छा तो फिर परिपक्व बुद्धि पुरुष वाले वेद शास्त्र आदि के रहते हुए वाक्यों में क्यों परिश्रम करें? वे सुकुमार मति या मंद मति हो तो नहीं जो काव्यों में लगे? उत्तर, यह ठीक नहीं, क्योंकि कड़वी कसैली औषध से शांत होने योग्य कोई रोग यदि मीठी मीठी सुंदर सफेद खाड़ से युक्त होने लग जाए तो ऐसा कौन अभागा रोगी होगा जो खाड़ खाना पसंद न करे। इसलिए यह कोई बात नहीं कि परिपक्व बुद्धि पुरुष काव्य नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार काव्यों की सर्वोपयोगिता को युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब उसे प्रमाणों से पुष्ट करते हैं। किंच एति, इसके अतिरिक्त काव्यों की उपादेयता अग्नि पुराण में भी लिखी है। नरत्वमिति, पहले तो संसार में मनुष्य जन्म नरत्व मिलना ही कठिन है, फिर विद्या होना और ही दुर्लभ है। इस पर भी कवित्व प्राप्त करना अति दुर्लभ और उसमें शक्ति प्राप्त करना अर्थात कविता करने की स्वभाव सिद्ध शक्ति पाना परम दुर्लभ है। त्रिवर्गेति नाट्य, अर्थात दृश्य काव्य त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के साधक होते हैं। वह वचन भी अग्नि पुराण का ही है, विष्णु पुराण में भी लिखा है। काव्य एति, सब काव्य और संपूर्ण गीत शब्द रूप धारी भगवान विष्णु के अंश हैं। चतुर्वर्ग इत्यादि कारिका के पदों की व्याख्या करते हैं। तेनेति, इस कारण चतुर्वर्ग का साधन होने से काव्य का स्वरूप कहेंगे। एतनेति, इस कारिका से अभिधेय अर्थात विषय और च शब्द से संबंध का प्रयोजन भी दिखाए गए हैं। वे अनुबंध चतुष्टय पहले कहे जा चुके हैं। तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते, एतेन अभिधेयं च प्रदर्शितं। तत्किस्वरूपं तावत् काव्यमित्यपेक्षायां कश्चिदाह तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणवन्नलंकृति पुनः कापि इति एतचिन्त्यं तथा हि यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वं तदा न्यकारो ह्यमेव मे यदरस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राससंकूलं जीवत्यहो रावणः दिग्धिक्षक्रजितं प्रबोधो इत्त्वयत्ता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामपि टीका विपुल कंठविनृत तोक्षुनौकिमे भिभ्रुज जय तस्कमिति। अच्छा तो फिर काव्य का क्या लक्षण है? इस आकांक्षा में कोई काव्य प्रकाशकार कहता है तत् दोष विति, दोष रूप रहित गुण सहित और अलंकारों से विभूषित शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं। किंतु यदि कहीं अलंकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि नहीं। एतदिति यह चिंतनीय दूषणीय है तथा हिति दोष दिखाते हैं। यदिति यदि दोष रहित हो को ही काव्य मानोगे तो न्यायकार आदि पद्य काव्य नहीं ठहरेंगे। न्यायकार इति यह रावण की गर्भ भरी क्रोध भक्ति है। जब श्री रामचंद्र जी लंका में राक्षसों का ध्वंस कर रहे थे उस समय अपने वीरों को भर्सन करने के लिए और शत्रु का तुच्छता आदि सूचित करने के लिए यह पद्य कहा गया है। अर्थ पहले तो शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है जिससे इंद्रादि देवों को भी कैद रख सका है। यमराज भी जिसके भांति जिससे कांपते हैं उसके शत्रु हो और वे जीते रहे कितना आश्चर्य और अनौचित्य है। यह भाव में पद से व्यंजित होता है। अस्मद शब्द से वक्ता के पूर्व कृत लोकस्तर चरित इंद्रया विजय और संबंध वाचक षष्ठी विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने संबंध का अनौचित्य द्योतित होता है और इससे रावण के हृदय का क्रोध प्रतीत होता है। अरह का बहुवचन उसी संबंध अनौचित्य की अधिकता का सूचक है। एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों क्षुद्र जंतु मेरे शत्रु हैं। यह अत्यंत अनुचित है। तत्रापिति उस पर भी वह तापस मेरा शत्रु है और यह और भी अनुचित है। तत्रापि इस निपात समुदाय से असंभवनीयता और तापस शब्द के मत्वार्थीय अणप्रत्यय से पुरुषार्थ का अभाव सूचित होता है। पुरुषार्थ विहीन क्षीण देह तापस लोकावरण रावण का शत्रु हो यह कैसी असंभव बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही है। असौ कहने से विशेषहीन दशा वांछित होती है। यथा जिसे घर से पिता ने निकाल दिया, जो बन बन में भटकता फिरता है, जिसके पेट को रोटी है न तन को कपड़ा, स्त्री के वियोग में दिन रात रोता रहता है और तपस्याओं से छीण है, वह असौ मेरा शत्रु है और यह और भी अनुचित बात है। सोप इति और वह भी यही है। यदि दूर कहीं छिपा रहता तो भी खैर थी। निहंत इति केवल है ही नहीं, राक्षसों के कुल का एक दो का नहीं संहार कर डाला। जीवत इति आश्चर्य तो यह है कि रावण जी रहा है। रावण इति रावण देवासुर आदि समस्त त्रिलोक को रुलाने वाले राक्षस राज रावण के जीते जी यह बात दिग्धा देती। इंद्रजीत मेघनाथ को धिक्कार है और जगाए हुए कुंभकर्ण से भी क्या बना जिनसे यह क्षुद्र शत्रु भी न मारा जाए। सक्रम जीतवान इस अर्थ से भूतकालिक प्रत्यय से मेघनाथ के इंद्रजीत विजय में अनावस्था सूचित होती है। स्वर्गेति और स्वर्ग रूप तुच्छ ग्राम को लूट लेने भर से व्यर्थ फूले हुए इन मेरे बाहुओं से भी क्या फल जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी क्षुद्र शत्रु की अब तक उपेक्षा की। यहाँ ये भी शब्द से यह भाव ध्वनित होता है कि जो भोज लोकतिशाई महिमा से युक्त है, जिनका कुछ कुछ बल वीर शंकर की कैलाश ही जानते हैं, उनका स्वर्ग रूप तुच्छ ग्राम की लूट से कृत कृत्य और प्रसन्न हो बैठना ठीक नहीं है। इसी प्रकार इसी भाव का पोषक अनादर सूचक उच्छुन शब्द है। इस पद्य के अधिकांश से अनुचित और कहीं कहीं से असंभावनीयता तथा अमर सादिक ध्वनित होते हैं। इन सबसे रावण के हृदय का गर्व सचिव क्रोध रूप अस्थाई भाव व्यंजित होता है। गुरु बंधु बदली परमा पराध जन्म प्रबल नाख्य क्रोध किंतु विभाव अनुभाव आदि सामग्री के अभाव में रौद्र रस पर्यंत पुष्ट नहीं होता है। अस्य श्लोकस्य विधेय विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात् प्रत्युत ध्वनित्वेनु उत्तम काव्यता अस्या अंगीकृता तस्माद् व्याप्तिर लक्षण दोषः ननु काश्चित् देवांशो अत्र दुष्णे न पुनः सर्व एवेति चेत हि यत्रांशे दोषः सो काव्यत्वं प्रयोजकः यत्र ध्वनि स उत्तम काव्य प्रयोजकः इत्यं साध्यनु भयत् आकृष्णमाणः मिदं काव्यं वा किमपि न स्यात् न च कञ्चिदेवांश काव्यस्त दुष्यन्तः श्रुतिष्टादयो दोषाः किं तर्हि मर्धमेव काव्यं तथा हि काव्यात्मभूतस्य रसस्यान् प्रकर्षत्वे तेषां दोषत्व अपि नांगिक्रियते अन्यथा नित्यदोषा नित्यदोषत्व व्यवस्थापि न स्यात् यदुक्तं ध्वनिकृता श्रुतिष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता धन्यान्तमन्येव शृङ्गारेति हेया इत्युदाह्यता इति किञ्चैव काव्यं प्रविलब् विषयं वा स्यात् सर्वथा निर्दोषस्यैव कांत संभवात् नन्वि पदार्थे नय प्रयोग इति चेतरहि इषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात् सति संभवे इष्टदोषौ इति चेत् एतदपि काव्यलक्षणौ वाच्यं रत्नादिलक्षणे कीटानुभेदादि परिहारवत् न हि कीटानुभेदादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुं मिसा किन्तु उपादेयतारतम्येव कर्तुं तद्वदर्थ श्रुति दुष्टा दयो अपि काव्यस्तम् उक्त च श्री तर्कवागीश जी ने इस पद में से दैन्य निर्वेद और अनौजस्य की ध्वनि निकाली है जीवस्यो रावण इत्यादि न विद्यमानेन स्वानौजस्य रूप दैन्ये अनुमान भावेन संबलितम् स्वावमाननम् निर्वेदाख्य भाव रूपो संलक्ष्य रावण परिसन लक्ष्य कर्म व्यंगो ध्वनि हमारी सम्मति में यह ठीक है नहीं जो रावण शब्द रावयति रोदयति जनानिति रावण इस योगार्थ सुनन सूचन के द्वारा अपनी शत्रु संहारता के सूचित करने को कहा गया है जो गर्भ का प्राण है रूप विद्यादि प्रयोक्ता मोतकर्षा ज्ञानाधीन परावहेलनम गर्भ उसी के आप दीनता के ध्वनि निकालते हैं और आप इस पद में निर्वेद का स्वप्न देख रहे हैं जो निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है वह यहाँ कैसे हो सकता है जो रावण शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ समझता है जो कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे महावीरों के संहारकारी शत्रु को भी क्षुद्र तापस की दृष्टि से देखता है समस्त देवताओं का पराभव करके की हुई स्वर्ग की स्वच्छंद लूट भी जिसकी दृष्टि में एक तुच्छ गामड़े की लूट सी अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखती उसी गर्वीले महावीर की कड़क भरी उक्तियों में से दीनता की दुर्गंध निकलना कहाँ तक उचित है राक्षस राजरावण के हृदय में मुनिजनोचित शांत रस के अस्थाई भाव निर्वेद का स्वप्न देखना कहाँ तक ठीक है अस्येति इस पद में विद्या विमर्श दोष है अतः यदि निर्दोष को ही काव्य मानोगे तो यह काव्य न ठहरेगा विधेय का प्रधान रूप से निर्देश न करने पर विधेया विमर्श दोष होता है।
इस लोक के चौथे चरण के वृथा तो विधेय है,
उसके वाचक वृथा शब्द को समास के भीतर डाल देने से वृथात्व में उपसर्जनता अप्रधानता प्रतीत होने लगी है। यह पदगत विधेय विमर्श है एवं चरण प्रथम चरण में उद्देश्य और विधेय के वाचक दो पक्ति की रचना के विपरीत हो जाने से वाक्यगत विधेय विमर्श है। पहले उद्देश्य कहकर पीछे विधेय कहना चाहिए। यहाँ अयम उद्देश्य और नियंकार विधेय है, इन्हें इसी क्रम में
से रखना चाहिए था, क्योंकि
अनुभावाद्य मनुक्तस्यैव न विधेयमुदिरये मुदिरयेत न हेलभ्यास्पदं किंचित् कुत्रचितं प्रतिष्ठितं। यह नियम है। प्रत्युत्तेति तद्दोषौ इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार तो यह सदोष पद्य काव्य कहा नहीं जा सकता, किंतु इसके विपरीत उन्होंने ध्वनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना है। अतः अव्याप्ति नामक लक्षण दोष हुआ, जो लक्षण अपने अभिष्ट उदाहरणों में भी न जाना जा सके उसमें अव्याप्ति नामक विमर्श दोष नहीं है। इसका विस्तृत अव्याप्ति नामक दोष आता है। यहाँ भी उक्त लक्षण इस काव्य के उदाहरण में नहीं जाता। वस्तुतः यहाँ विधेया विमर्श दोष नहीं है, इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट में देखिए। प्रश्न नन्विति इस पद में जहाँ विधेया विमर्श दोष है वहीं दूषित है सब तो नहीं? फिर जिस अंश में दोष है वह अकाव्य तत्व का प्रयोजक रहे, किंतु जिसमें ध्वनि है वह तो उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा। उत्तर इस प्रकार इन दो विरुद्ध अंशों से इधर उधर खींचा गया यह पद न तो काव्य ही रहेगा न अकाव्य ही। इस खींचा तानी से ही नष्ट होकर उभय तो भ्रष्ट होगा। यदि कोई अदोषव का यह अर्थ करे कि आंशिक दोष के सिवा कोई बड़ा व्यापक दोष जिसमें न हो वह काव्य होता है, तो उक्त पद इस आंशिक दोष के रहने पर भी काव्य अवश्य कहलाएगा। इस मत का खंडन करते हैं नच एति। इसके अतिरिक्त श्रुति दुष्टत्व विधेया विमर्शत्वादिक दोष काव्य के किसी एक अंश को ही दूषित करते हो सो बात भी नहीं है, तो फिर क्या है? संपूर्ण काव्य को किसी एक अंश को ही दूषित करते हैं सो बात भी नहीं है तो फिर क्या है संपूर्ण काव्यों को दूषित करते हैं यह सिद्धांत है। इसी बात को दोषों की रस दूषकता के द्वारा सिद्ध करते हैं। तथा इति काव्यों का आत्मस्थानापन जो रस उसमें यदि अपकर्ष हीनता न पैदा करे तो श्रुति दुष्टत्वादि को दोष नहीं माना जाता। तात्पर्य यह है कि दोषों का सामान्य लक्षण है रसापकर्ष का दोष, अर्थात जो रस के अपकर्ष है वे ही दोष है और इस काव्य के आत्मभूत है। अतएव शरीर में आत्मा की तरह संपूर्ण काव्य में व्याप्त रहता है, किसी एक अंश में नहीं रहता। इसलिए जो दोष यथावत काव्य में व्यापक रस को ही दूषित करते हैं वे किसी एक अंश के ही दूषक माने जाएं, यह नहीं हो सकता। वे संपूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते हैं। दोषों का संबंध रसों से है, यदि वे रस के अपकर्ष नहीं हैं तो उन्हें दोष भी नहीं कह सकते। अन्यथेति यदि यह बात न माने तो नित्य दोष और अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकती। जब दोषाधायक होने के कारण श्रृंगार आदि कमलों रसों में श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है, किंतु वीर आदि दीप्ति रस में वैसी रचना उल्टा गुण है, अतः वहाँ वह दोष नहीं होता क्योंकि उन रसों का अपकर्ष नहीं करता। इस प्रकार श्रुति कटुत्व आदि के अनित्य दोष सिद्ध होते हैं और जो दोष सब रसों को दूषित करते हैं जैसे च्युत संस्कारत्व प्रभृति वे नित्य दोष माने जाते हैं। यदि रसों से दोषों का संबंध न माना जाए तो नित्य दोष और अनित्य दोष की व्यवस्था नहीं हो सकती। इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं यदुक्तमिति, जैसा ध्वनिकार ने कहा है श्रुत इति। इस कारिका में च शब्द भिन्न कर्म है, उसका संबंध ये पद के साथ नहीं किंतु अनित्याह के साथ है। दोषा अनित्याश्च ऐसा संबंध है, यहाँ दोषत्व और अनित्यत्व दोनों विधेय है। अतः ऐसा अर्थ है कि जिन श्रुति दुष्टत्वादिक को दोष कहा है और अनित्य बतलाया है वे ध्वनि अर्थात उत्तम काव्य के आत्मभूत अर्थात प्रधान व्यंग श्रृंगार में ही त्याज्य है, सर्वत्र श्रृंगार में भी नहीं। यहाँ श्रृंगार शब्द कोमल रसों का उपलक्षण है, अतः शांत तथा करुणादिक रसों में भी इन्हें हे अम जानना। श्रृंगार यदि केवल वाच्य हो अथवा इस किसी का अंग हो, यदा श्रृंगार अतिरिक्त कोई दीप्त रस व्यंग हो तो दुष्टत्व आदि को दोष नहीं माना जाता। ये उसी दशा में दोष होते हैं जब श्रृंगार ध्वनि उत्तम काव्य का आत्मा प्रधान व्यंग हो। यही यहाँ एवं शब्द का व्यवर्त्य है, यही बात ध्वनिकार श्री मदानंद श्रीमद आनंद वर्धनाचार्य ने अपनी इस कारिका की व्याख्या में कही है। अनित्याह दोषाश्च ये श्रुति दुष्टवादयः सुचित्तास्ते अपि न वाच्यार्थमात्रे न च व्यंगे श्रृंगारे श्रृंगार व्यतिरिक्तिर्न वा ध्वनिरत्मात्म भावे किं तर्हि ध्यानमत्येव श्रृंगारे अंगीतया न्यंगये। श्री तर्क वागीश जी ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है ध्वनिर्व्यंजकः शब्दो व्यंजमानो वा अर्थदात्मन आत्मा शरीरं यस्य अस्मिन् तस्मिन् श्रृंगारे एव इति। यह अर्थ पूर्वोक्त आचार्य ग्रंथ से विरुद्ध है क्योंकि तर्क वागीश जी ने ध्वन्यात्मनी में बहुव्रीहि समास माना है और इस कारिका के बनाने वाले ने स्वयं षष्ठी समास लिखा है। अतः यहाँ बहुव्रीहि मानने में एक तो आचार्य ग्रंथ का विरोध होता है और दूसरे बाध्यभूत बहिरंग समास का आश्रयण करने में व्यर्थ का गौरव, तीसरे आत्मा पद का लाक्षणिक अर्थ शरीर परक करने से क्लेश होता होगा। इसके अतिरिक्त एवं पद कारिका में ध्वन्यात्मनी के साथ ही पढ़ा है और पूर्वाचार्यों ने इसे इसी के साथ लगाया भी है एवं युक्ति संगत भी ऐसी यही है। तर्क वागीश के अनुसार यदि एव को श्रृंगार के साथ लगाए तो यह अर्थ होगा कि श्रृंगार में ही श्रुति दुष्टत्वादिक हेय है, इससे करुण शांत आदि रसों से इनकी व्यवृत्ति नहीं होगी परंतु यह आत्मा अत्यावश्यक है। अतएव अभिनवगुप्त पदाचार्य ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि श्रृंगार यत्युक्चितर शोपलक्षणार्थम बिरसांताद भूतवापि तेसाम वर्जनात्। श्रृंगारे एव कहने से तो अविधा ही इस लक्षण को रोक देगी, फिर उपलक्षणा हो ही नहीं सकेगा। जैसे यदि कोई कहे कि गंगा यामेव घोषः। तो वहाँ लक्षण से तट रूप अर्थ का भान नहीं होता। तर्क वागीश जी ने यहाँ व्यज्यमान अर्थ को भी शरीर माना है, परंतु व्यज्यमान अर्थ को उपस्कार और प्रधान होता है। रसादिक भी व्यज्यमान अर्थ से ही है। क्या वे भी काव्य के शरीर और फिर आत्मा कौन होगा? इसके अतिरिक्त बहुव्रीही समास के इस दोषपूर्ण द्रविण प्राणायाम से भी अर्थ वही निकला जो सीधे साधे षष्ठी तत्पुरुष समास से निकलता है। अतः श्री तर्क वागीश जी का उक्त अर्थ अप्रामाणिक और असंगत है। श्लोक संस्कृत वाक्य किटानुबेध्व रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टस्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः इति किञ्च शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषण मनुत्पन्नं गुणानां रसैकधर्मत्वस्य ये रसयाङ्गिनो धर्माः शौर्यादयैवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात् रसाभ्यञ्जकत्वेन उपचारत उपत्पद्यत धर्माः शौर्यादयः इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादित्वात् रसाभिव्यञ्जनकित्योपचारय उपपद्यत इति चेत् तथाप्युक्तम् तथा हि तयोः काव्यस्वरूपेण भीमतयोः शब्दार्थयोः रसो अस्ति न वा? नास्ति चेत् गुणवत्मपि नास्ति गुणानाम तदन्वय व्यतिरेकानुविधानायित्वात् अस्ति चेत् कथम् नोक्तम् रसवन्तावती विशेषणम् प्रवत्त्वात् अन्यथानुपदत्तैश्च लभ्यत इति चेत् तर्हि सरसावित्येव वक्तुम् युक्तम् न सगुणवति न हि प्राणीमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशा इति केनाप्युच्युते ननु शब्दार्थौ सगुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यञ्जकौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोजवित्य अभिप्राय इति चेतनः गुणाभिव्यञ्जन शब्दार्थत्वाद् काव्ये उत्कर्षमात्राध्यकत्वं न तु स्वरूपधायकत्वं। उक्तं हि काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं रसादिकात्मा गुणाः शौर्यादिवत् दोषाः करणत्वादिवतः रीतयो अवयवः संस्थान विशेषवत् अलङ्कारा कटकुण्डलादिवत् इति। एतेन अलङ्कृति पुनः कपि पुनः क्वापि इति यदुक्तम् तदपि परास्तम् अस्यार्थ सर्वत्र सलङ्कारौ क्वचित् अस्फुट अलङ्कारवपि शब्दार्थौ काव्यम् इति। तत्र सा अलङ्कार शब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कर्षमात्राधायकत्वात् एतेन वक्तोति काव्यजीवितम् इति वक्तोति जीवितकारोक्तमपि परास्तम् वक्त्रो अलंकार रूपत्वात् यतु क्वचिद् स्फुटालंकारत्वे उदाहतम् यः कौमा रहरः स एव हि वास्ता एव चैत्रक्षपास्ते च उन्मिलेत्तमालत्ति सुरभयः प्रौढाः कदम्बालिनः सरि कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसी वेस्तसी तरुतले चेतः समुत्कण्ठे इति। एतचिन्त्यम् तत्र हि विभावानविशेषोक्तिमूलस्य सन्देप अलङ्कारस्य स्फुटत्वम् एतेन अदोषम् गुणवत् काव्य अलङ्कारैरलङ्कृतम् रसान्वितम् कविः कुर्वन् कृतिम् प्रेतिम् च विन्दति इत्यादिनामपि काव्यलङ्कारलक्षणमस्पास्तम् यतुध्वनीकारेणोक उक्तम् काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति। तक्किम् वस्त्वलङ्काररसादि लक्षणस्त्रीरूपो ध्वनिः काव्यस्तत्र उक्तरसादि मात्रो वा नाद्य प्रहे लिकादाव व्याप्तिर्व्याप्ते द्वितीयच्छेदो अमिति ब्रुमः ननु यदि रसादि रूपमात्रो ध्वनिः काव्यसात्मा तदा अतायत्थणी मञ्च्य एता अहम् द्यस्यम् पलो एहि माम् पहीय रति अंधीय सजायमः णिमञ्झहिसि इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यंगत्वे कथ काव्यव्यवहार इति चेतन अत्रापि रसाभास वत्यत्ते वेति व्रुमः अन्यथा देव दतो ग्रामं याति इति वाक्ये तदभृत्यस्य तदनु सरण रूप व्यंगत याव तेर अपि काव्यत्वं स्यात् प्रास्मिति चेतन रसवत एव काव्यांगिकारात काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वाद मुखपिण्डदानाद्वारा वेदशास्त्र विमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत्त्वप्रतिव्यतम् प्रतर्तितव्यम् नरावणादि वपदित्यादिकृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेश इति चिरन्तरनैव इत्युक्तत्वात् तथा च अग्नेयपुराणियुक्तम् वाग्वैदग्धप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् इति व्यक्तिविवेककारेण प्रयुक्तम् काव्यस्त आत्मनि संगिनि रसादिरूपेण कस्यादिचेदि मति इति ध्वनिकारेण युक्तम् न हि कवेरीति वृत्तमात्र निर्वाहे अणात्मपदलाभ इतिहास नेरेव तत्सिद्धे इत्यादि ननु तर्हि प्रबन्धान्नवर्तिता वर्तिना केषामचित्रिरसानाम पद्यानाम काव्यत्वं न स्यादिति वेतन रसवत्तपद्यान्तर्गत नीरस पदनामिव पद्मरसे न सद्भावाञ्च काव्यव्यवहारस रसादिमत्काव्यबन्धसंम्याद गौणैव यतु वामनेनोक्तं रीतिरात्मा काव्यस्य इति तत्र रीतेः संघटनात् विशेषत्वात् संघटनाश्च द्वसंस्थान अनुसंस्थान रूपत्वात् आत्मनश्च तद्वित्तत्वात् यश्च ध्वनिकारणोक्तम् अर्थः सहृदयसाल्लाध्यकाव्यात्मा यो व्यस्थितः व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमान्याख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ यदि अत्र वाच्यत्वं काव्यास्वात्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधादेव स्वापास्तम तत्किस्वरूपं काव्यमित्युच्यते। यदि कोई कहे कि संदोष वाक्यों को ध्वनि के रहने पर भी हम काव्य नहीं मानते तो उसके प्रति पक्षांतर उठाते हैं। किंच वमिति संदोष को काव्य नहीं मानने से या तो काव्य के लक्षण का विषय अत्यंत विरल हो जाएगा या असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि किसी वाक्य का सर्वथा निर्दोष होना एकदम असंभव है। प्रश्न ननविति यदि सर्वथा निर्दोष वाक्य दुर्लभ हो है तो अदोषव पद में नए को ईषदर्थक मानेंगे। उत्तर यदि ऐसा करोगे तो ईषदोषव शब्दार्थव काव्यम यह लक्षण होगा। इसका अर्थ है कि थोड़े दोष से युक्त शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। इसके अनुसार काव्यों में थोड़ा दोष रहना भी आवश्यक होगा, और यदि किसी अति निपुण कवि के निर्दोष शब्द और अर्थ हुए तो वे काव्य नहीं कहलाएंगे। सत इति यदि इस लक्षण में सत संभवे इतना और निवेश करके यह अर्थ करो कि दोषों की संभावना होने पर थोड़ा दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, अधिक दोष युक्त नहीं सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि काव्य के लक्षण में न तो इस विशेषण की कोई आवश्यकता है और न इस विशेष की। जैसे रत्न के लक्षण में कीटानुवेश का परिहार नहीं किया जाता, वैसे ही काव्य के लक्षण में दोष का परिहार अनावश्यक है। जैसे कीड़ा लग जाने से किसी रत्न का रत्नत्व नहीं दूर हो जाता, केवल उसकी उपादेयता से तारतम्य हो जाता है, इसी प्रकार श्रुति दुष्टत्वादिक दोष काव्यत्व के काव्यत्व को नहीं हटा सकते, केवल उसके उत्कर्ष में कुछ न्यूनता कर सकते हैं। इस बात के प्रमाण में प्रमाण देते हुए उक्तन चेति कीटेति, जहाँ रसादि का मान स्फुट होता है, वहाँ कीटानुबुद्ध रत्नादि के समान दोष रहने के पर भी वाक्यत्व माना जाता है। अतः उक्त काव्य लक्षण में व्याप्ति दोष आवश्यक है, अवश्य है। दूसरा दोष देते हैं, किंच एति शब्दार्थ, इसका सगुण यह विशेषण भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि गुण केवल रस से ही हो रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं। यह बात अष्टम उल्लास में गुणों का वर्णन करते हुए वही काव्य प्रकाश ने स्वयं कही है, ये रसस्य अंगिनो धर्माः शौर्यादयैवात्मना उत्कर्षे अतस्वते स्यूर चल स्थितो गुणा। अर्थात जैसे आत्मा का गुण सूरता आदि है, इसी प्रकार माधुर्य आदि गुण काव्य के आत्मभूत रस के ही धर्म है और अचल है। इससे स्पष्ट है कि गुण रसों में ही रहते हैं, शब्द या अर्थ में नहीं। यह कहो कि शब्द और अर्थ रस के व्यंजक होते हैं, अतः उपचार परंपरा संबंध से इनमें भी गुण दोष रह सकते हैं। स्वाश्रय व्यंजकत्वम संबंध से शब्द अर्थ भी सगुण हो सकते हैं, स्व करके गुण आदि का आश्रय रस उसके अभिव्यंजक शब्द और अर्थ होते हैं। इसका खंडन करते हैं, तथाप्य युक्त में इति यो भी ठीक नहीं, तथा यो रीति, यह तो बतलाओ कि तुम जिन शब्दों और अर्थों को काव्य समझते हो उनमें रस रहता है या नहीं, यदि नहीं तो उस गुण भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुण तो रस के अनन्वय व्यतिरेक का अनुगमन करते हैं। रस हो तो वे भी होते हैं, और यदि रस न हो तो वे भी नहीं होते हैं। यत्सत्वे यत्सत्त्वमिन्यन्वम पदभावे यदभावो यति व्यतिरेकः, एक के होने पर दूसरे का होना अन्वय और एक के न होने पर दूसरे का न होना व्यतिरेक कहलाता है। यदि कहो कि उनमें रस है तो फिर रसवंत यही विशेषण क्यों नहीं दिया? यदि कहो कि गुण बिना रस के रह ही नहीं सकते, अतः सगुण से कहने से ही रस सरस होना अर्थ बल से सिद्ध हो जाएगा, तो इस दशा में भी सरसव यही विशेषण देना चाहिए, सगुणव नहीं, क्योंकि प्राणी मान देश है, इस वाक्य की जगह शौर्य मान देश है। यह वाक्य कोई नहीं बोलता, यद्यपि शौर्य बिना प्राणी के नहीं हो सकता, तथापि बिना प्रयोजन की किसी सीधी बात को चक्कर में डालना कोई पसंद नहीं कर सकता, अतः यहाँ सरसव कहना ठीक नहीं है, ठीक है। ननविति, यदि कहो कि सगुण शब्दार्थ हो, इसका यह अभिप्राय है कि गुण के अभिव्यंजक शब्दों और अर्थों का काव्य में प्रयोग करना चाहिए, यह ठीक नहीं, क्योंकि गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ काव्य में केवल उत्कर्ष पैदा करते हैं, वे स्वरूप के आदायक नहीं होते। उत्कर्ष हिति इसलिए कहा है, काव्य स्थिति काव्यस एति, शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और रसादिक आत्मा है। मधुर्यादिक गुण स्वर्यादिक की भांति श्रुति कटित्वादिक दोष कारणत्वादि के तरह बेधर्मी आदि रीतियां अंग रचना की सदृश और उपमादिक अलंकार कटक कुंडलादि के तुल्य होते हैं। इसमें काव्य को पुरुष के समान माना गया है, और पुरुषों में जैसे शरीर आत्मा गुण दोष अलंकारिक होते हैं, इस प्रकार काव्य में भी बतलाए हैं रस गुण दोषादिकों का स्वरूप आगे कहेंगे। इति एति इस काव्य पुरुष के रूपक और पूर्व लक्षण में कहा हुआ अलंकृतौ पुनः कोपि यह अंश भी खंडित हो गया है। खंडन प्रकार दिखाते हैं अस्यार्थ इति इस अंश उक्त सॉरी इसी उक्त अंश का यही अर्थ है कि सब स्थानों पर अलंकार युक्त शब्द अर्थ होने चाहिए, किंतु यहाँ कहीं अलंकार स्फुट न हो तो वहाँ भी काव्यगत्व काव्यत्व होता है, परंतु उक्त रूपक में अलंकार को स्पष्ट कटक कुंडल के तुल्य कहने से यह स्पष्ट है कि वे उत्कर्ष करने वाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं होते। इति नेति इसी से वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम यह वक्रोक्ति जीवितकार का कथन भी खंडित हो गया है, किसी क्योंकि वक्रोक्ति की यह एक अलंकार है और अलंकार स्वरूप के अंतर्गत नहीं होते और वे केवल उत्कर्ष पैदा करते हैं। यतु स्फुट अलंकार का जो निम्नलिखित उदाहरण काव्य प्रकाशकार ने दिया है वह भी ठीक नहीं है। वा यति जिसने बाल भाव अथवा अनुढ़ को दूर किया वही तो वर है और वे ही पूर्वानुभूत चैत्र मास की वसंत ऋतु की रात्रियां हैं। खिली हुई मालती वसंत वसंती लता से सुगंधित वही प्रौढ़ अमन अर्थात उद्दीपक कदम वन का समीर है और मैं वही हूँ। तात्पर्य यह है कि वस्तुएं पूर्वानुभूत ही है, कोई नई चीज या नई बात नहीं। तो भी नर्मदा के किनारे उस वेद की कुंज में विहार करने से जो उत्कंठित हो रहा है एतत् चिन्तये मिति यह उदाहरण चिंत्य दृश्य है, दोष दिखाते हैं। अत्र इति यहाँ विभावना और विशेषोक्ति से उत्थात पीति संदेह अलंकार स्फुट है, अतः यहाँ अस्फुट अलंकार बताना ठीक नहीं। हेतु के बिना ही यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है और करुण के होने पर भी यदि कार्य की उत्पत्ति न हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। एवं जहाँ अनेक अलंकारों का संदेह हो लक्षण कोई मिलते हो किंतु कोई विभाग विनिगमक न हो वहाँ तन मूलक संदेह संग्रह कहलाता है। प्रकृत पद्य में सब वस्तुओं के अद्भुत बतलाया गया है, नया कुछ नहीं है। अतः उत्कंठ की कारणभूत नवीनता के न होने पर भी उत्कंठा को अवंडुत बतलाया गया है। रूप कार्य के उत्पन्न होने से विभावना अलंकार हो सकता है और उत्कंठा न होने का कारण अनुभूतत्व या अनुविनत्व तो है, किंतु उत्कंठा भाव रूप कार्य नहीं हुआ। अतः यहाँ विशेषोक्ति का लक्षण भी मिलता है किंतु कोई विनिगम एक या निर्णायक हेतु नहीं। अतः विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकरालंकार स्फुट है। इति नेति इस पूर्वोक्त कथन से अदोसमिति दोष रहित गुण सहित अलंकारों से भूषित और रस से युक्त काव्य को बनाता हुआ कवि कृति और प्रीति को बताता है कृति को पता है इत्यादि काव्य के लक्षण भी खंडित हो गए क्योंकि दोष गुणादि को स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता। यतु काव्य स्तमाता ध्वनि काव्य का आत्मा ध्वनि है और जो ध्वनिकार ने कहा है वहाँ प्रश्न यह है कि क्या वस्तु अलंकार और रसादिक इन सबकी ध्वनियों को जो काव्य की आत्मा मानते हो या केवल रसादिक की ध्वनि को ही, इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं क्योंकि पहली आदि से यहाँ वस्तु ध्वनित होती है काव्य का लक्षण अति व्याप्त हो जाएगा। अलक्ष्य में लक्षण के हो जाने से अति व्याप्ति नामक लक्षण का दोष होता है। यदि दूसरा पक्ष मानो तो हमें स्वीकार है रसादिक ध्वनि को हम भी काव्यात्मा मानते हैं। नन्वेविति प्रश्न यदि केवल रसादिक ध्वनि को काव्यात्मा मानते हो तो निम्न पद में काव्य की लक्षण नहीं जाएगा। अतः स्वश्रुरत्न निमंजति अत्रा अहम दिवस एव प्रलोकय माम पथिक रात्रंध सज्जायाम मम निमकंक्षयसि इस स्थान पर मेरी सांस नींद में निमग्न होती है अर्थात बेखबर सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ। दिन में ही देख लो हे रात के अंधे पथिक कहीं रात में मेरी खाट पर मत आ पड़ना। यह स्वयं द्युति की उक्ति है इत्यादि इत्यादिक स्थलों में जहाँ वस्तु मात्र व्यंग है काव्यत्व का व्यवहार कैसे होगा। उत्तर अत्राप इति यहाँ इस रक्ताभास से सॉरी यहाँ इस रसाभास के कारण भी हम काव्यत्व मानते हैं। उक्त पद में आगंतुक पर पुरुष में स्वयं द्युति का अनुराग प्रतीत होता है अतः सिंगारा भास है अन्यथ एति। यदि यह न मानो अर्थात वस्तु मात्र के व्यंग होने पर भी यदि काव्यत्व तो मानने लगो तो राजा देवदत्त गांव को जाता है इत्यादि वाक्य भी काव्य को हो जाएगा क्योंकि इस वाक्य से भी देवदत्त के वृत्त के पीछे जाना व्यंग है। अस्तित्व यदि कहो कि यह भी वाक्य की सही है तो यह ठीक नहीं वृत्त के पीछे पीछे जाना व्यंग है क्योंकि सरस वाक्य ही काव्य माना जाता है अन्य नहीं। इसमें प्रमाण देते हैं काव्यस एति। प्राचीन आचार्यों ने भी रसात्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के द्वारा कठिन वेद शास्त्रादियों से विमुख सुकुमार बुद्धि शिक्षणीय राजपुत्रादियों के प्रीति रामादि की तरह प्रवृत्त होना चाहिए रावणादि की तरह नहीं इत्यादि कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य में निवृत्ति के उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन बतलाया है। अतः जहाँ रसास्वाद है वे ही वाक्य काव्य है नीरस नहीं तथाच एति। ऐसा ही अग्नि पुराण में कहा गया है वाग इति। वाणी के चातुर की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवन भूत रस ही है वक्त इति। व्यक्ति विकार महिमा भट्ट में भी कहा है काव्यस एति। काव्य के असंभत संघी अस्थाई रसादिक है इसमें तो किसी को विवाद ही नहीं। ध्वन इति ध्वनिकार ने भी कहा है नह इति। कवि यदि केवल इतिहास लिख दे तो उस ग्रंथ को आत्मवाद प्राप्त नहीं हो सकता। कवि जो कुछ लिख दे वह सब काव्य नहीं हुआ करता और न उससे काव्य का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। पुरानी कथाओं का ज्ञान होना काव्य का प्रयोजन नहीं है वह तो इतिहास पुराणादिक से भी हो सकता है। ध्वन्यलोक की वर्तमान पुस्तकों में यहाँ ऐसा पाठ मिलता है नहीं कुबेरे तिब्रत निर्वहणेन किंचित प्रयोजनम इतिहास सादरेव तत्सिद्धे। ननविति प्रश्न यदि सरस वाक्य की काव्य होते हैं तो रघुवंशादिक प्रबंधों से अंतर्गत जो अनेक नीरस पद हैं वे काव्य न रहेंगे। उत्तर ऐसा नहीं जैसे सरस पद्य में कुछ नीरस पद उसी पद्य के रसरस से रसवान समझे जाते हैं उसी प्रकार प्रबंध के रस से नीरस पद्यों में भी रसवता मानी जाती है। यहाँ पद्य शब्द गद का भी उपलक्षण है यतु गणों के व्यंजक वर्णों के और अलंकारों के होने एवं दोषों के न होने से नीरस वाक्यों का भी जो काव्यत्व व्यवहार देखा जाता है वह सरस काव्य के बंध रचना की क्षमता के कारण किया हुआ गौर लाक्षणिक प्रयोग जाना जाता है। काव्य शब्द का मुख्य प्रयोग सरस काव्य में ही होता है यतु वामनेन यह जो वामन अलंकार सूत्रकार श्री वामनाचार्य ने कहा है कि काव्य की आत्मा रीति है सो भी ठीक नहीं क्योंकि रीति तो संघटना रचना रूप है और संघटना शरीर की अंग विन्यास के तुल्य होती है अथा वह आत्मा नहीं हो सकती आत्मा शरीर से भिन्न है। यत एचित ध्वनिकार ने यह जो कहा है अर्थ इति सहृदयोग से शपथ जो अर्थ काव्य में आत्मा व्यवस्थापित किया है उसके दो भेद होते हैं एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। इस कारिका में वाच्यार्थ को काव्य का आत्मा बतलाना उनके काव्यस्तात्मा ध्वनि इस अपने अर्थ कथन से ही विरुद्ध होने के कारण निरस्त समझना चाहिए। एक में केवल ध्वनि को काव्य का आत्मा बतलाना और दूसरे में वाच्य को भी आत्मा कहना परस्पर असिद्ध है। नीचे वार्तिक में लिखा है हमने अलंकार कल्प मुद्रुम नामक निबंध में विश्वनाथ जी के आक्षेपों पर विस्तृत विचार किया है। बुद्धिमान जिज्ञासुओं के विनोदार्थ उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं।